హరే కృష్ణ. శ్యామనకుగా తిరువాది వసేస్తే జీ అని ప్రేమధన ఓ సాంగ్ భీ గాయంగే ఆర్ ఏ ఛోటా సాంగ్ హై సో భీ గానే కా ప్రయాస్ కరేంగే హమ్. జయనిలో ప్రేమధన కరుణా ప్రచురనిలో ప్రేమధన కరుణా ప్రచురేన ప్రభు కౌథాగిలా ఆచార్య ఠాకూర్ कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनाता कहाँ दास रघुनाथ पतित యుగ కహ కవీరా కాలి కౌథాగిలా గౌర నటరా షణి కుటీవ మథా అనలి పశివ గౌరంగా గుణేరనిధి కౌథగిలి పావ సేసబ సంగీరా సంగే శ్రీ కోయిలో విలా సే సంగనా పాయా కందే నరోత్తమ జయనిలో ప్రేమ ధన కరుణా ప్రచూర ప్రభు కౌథాగిలా ఆచార్య ఠాకూర్ హేన ప్రభు కౌథా श्यामानंथा जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर आमी तुमार कुकुर वैष्णव ठाकुर आमी तुमार कुकुर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। क्योंकि आज श्यामानंद बाबू का आज तिरुभाव दिवस है, थोड़ा उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो श्यामानंद बाबू जो थे, ये हरिदास हरिदानंद चैतन्य ये इनके शिष्य थे, और हरिदानंद चैतन्य जो कि गौरदास पंडित जो थे उनके शिष्य थे। तो इस प्रकार से गौरदास पंडित जो है वो सुबल सखा है, तो उनके दास अनुदास इस प्रकार से श्यामानंद बाबू थे। तो श्यामानंद बाबू का जो जन्म हुआ, तो इनके माता पिता के पहले बहुत सारे बच्चे जो थे ना, उनका देहांत हो चुका था, जन्म के वक्त ही देहांत हो गया था। तो इसलिए माता पिता बहुत ज्यादा दुखी थे, और उनको ये था कि ना परिवार में निश्चित रूप से कोई ना कोई संकट है, कोई अपशगुन है कि घर में जो भी जन्म लेता है उसका उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने बहुत साधना तपस्या और प्रार्थनाओं के द्वारा फाइनली श्यामानंद बाबू को प्राप्त किया, तो उन्होंने उनका नाम रखा दुखी। उन्होंने इसलिए नाम दुखी रखा कि कोई अपशगुन जो है ना वो सारा क्या नाम में चला जाएगा, नाम ही क्या रख दो दुखी तो जीवन हो जाएगा सुखी। तो इसीलिए उन्होंने नाम रख दिया दुखी करके। अब दुखी हालांकि नाम इनका रखा, लेकिन बचपन से ही जो है इनकी रुचि सिर्फ भगवान में, भगवानी कथाओं में, हरि कथाओं में रहा करती थी, हरि नाम में रहा करती थी, और शुरू से वैष्णव का संग करते थे। तो इस प्रकार से दुखी जो थे बहुत ही इनकी ख्याति बचपन से फैलने लगी थी। खेल कूद में इनका मन नहीं लगता था, इनका वहां मन लगता था जहां हरि कथा और हरि नाम हो रहा है, बस वहीं इनका मन लगता था। और इसीलिए सोते भी थे तो रात को भगवद्गीता या भागवतम को अपने हृदय से लगा कर सोया करते थे। तो बचपन से ही जो है इनकी सारी जो आदतें, इनकी रुझान बहुत ही कृष्ण भावना भावित थे। तो उसके बाद जब ये बड़े हुए तो इनका ख्याति बहुत फैल गई। तो जब ये हरि कथा सुना भी करते थे, तो उस वक्त जो है इनको पता लगा कि हृदय चैतन्य नाम के बहुत ही महान वैष्णव हैं, और उनसे जब इन्होंने कथा सुनी तो उनसे इतनी प्रेरणा मिली इनको कि उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अगर दीक्षा लूंगा तो हृदय चैतन्य जी से लूंगा, हृदयानंद जी से लूंगा। मैं हृदय चैतन्य भी था तो उनसे जाकर मैं दीक्षा लूंगा। तो फिर उनसे उन्होंने दीक्षा ली, तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम तो दुखी है, लेकिन तुम जितने कार्य करते हो उससे तो सुख मिलता है, तुम्हारा जीवन तो बड़ा सुखी है, तो इससे तुम्हारा नाम दुखी नहीं होना चाहिए, तुम तो कृष्ण के दास हो, इससे तुम्हारा नाम है कृष्णदास। तो इस प्रकार से उनका नाम पड़ गया कृष्णदास। तो कृष्णदास के रूप में विख्यात हुए, लेकिन कुछ लोग पुराने नाम से भी जानते थे तो बोला करते थे दुखी कृष्णदास, लेकिन वैसे जो उनको नाम मिला था वो था कृष्णदास। तो ये इनको जो है श्री जीव गोस्वामी जी की पाठशाला भेजा गया था ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे कि अक्सर हम लोग अगर अपने मंदिर के भक्तों को भेजते हैं तो पंजाबी बार टेम्पल भेजते हैं। तो ये कोई नया कल्चर नहीं है, ये जीव गोस्वामी जी के समय से चला आ रहा है कि अगर भक्तों को ट्रेनिंग देनी हो तो बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर भेजना चाहिए, और हमारे ओपिनियन में जो बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है इसकॉन पंजाबी बाग श्री राधा राधिकरमन टेम्पल है। तो इसीलिए हम भक्तों को ट्रेनिंग के लिए, तो जीव गोस्वामी जी का सेंटर जो है हमारे लिए इस्कॉन पंजाबी बाग है। तो यहाँ रुक्मिणी कृष्ण बाबू और उनके पार्षद बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर आते हैं भक्त बनते हैं यहाँ पर, चाहे कांग्रेगेशन के हो चाहे ब्रह्मचारी हो। तो इसीलिए ये जीव गोस्वामी जी का सेंटर है मॉडर्न टाइम्स में इस्कॉन पंजाबी बाग। तो ये कल्चर उस वक्त से चला आ रहा है कि सब ट्रेनिंग के लिए अगर भेजा करते थे तो श्री जीव गोस्वामी जी की पाठशाला भेजा करते थे, और वहां पर इन्होंने विद्या प्राप्त करनी शुरू की। तो श्री जीव गोस्वामी क्या करते थे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ टाइटल दिया करते थे, स्नेहवश दिया करते थे। जैसे नरोत्तम दास जी को टाइटल दिया गया ठाकुर, तो नरोत्तम दास ठाकुर पड़ा। उस तरह से श्रीनिवास जी को मिला आचार्य, श्रीनिवास आचार्य। उसी प्रकार से इनको भी नाम दिया गया, ऐसा टाइटल दिया गया, नाम चेंज नहीं किया, जिनका नाम था दीक्षा के वक्त वो सेम ही रहा। कृष्णदास, लेकिन नाम दिया गया श्यामानंद, यानी कि श्यामा यानी श्रीमती राधा रानी को आनंद देने वाले, इसलिए इनका नाम है श्यामानंद, या श्याम आनंद यानी भगवान श्याम को आनंद देने वाले, जिस तरह से इनका नाम श्यामानंद पड़ा। तो इस प्रकार से जो श्यामानंद प्रभु थे, जब इनकी दीक्षा हो चुकी तो इनके गुरुदेव ने इनको भेजा था वृंदावन कि आप ट्रेनिंग लो और वहीं पर बहुत इंटेंस भजन करो। तो इस प्रकार से वहीं पर भजन क्या करते थे और बड़े ही विनम्र भाव से सेवा क्या करते थे, सेवा कुंज में। तो वहां पर जब सेवा कर रहे थे, झाड़ू मार रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ, एक बार उनको एक पाजेब या पायल मिली। उन्होंने कहा ये किसके है, तो बहुत बड़ी दिव्य, ऐसा डिजाइन जो है बहुत ही जगत का हो नहीं सकता। तो देखा तो इसको जो है अपने पास रख लिया। अगले दिन जब झाड़ू मारने के लिए आए तो एक बड़ी दिव्यमान स्त्री आई। उन्होंने कहा तो सुनो, ये तुमने क्या यहां पर कोई पायल देखी क्या? कहते हैं हाँ मेरे पास ही है। कहते दे दो, वो हमारी है। कहते हमारी मतलब किसकी है? कहते वो मेरी स्वामिनी है ना, उनकी है। कहते हमने स्वामिनी को लेके आओ, हम उन्हीं को देंगे, हम किसी और के हाथ नहीं देते, पता लगा किसी गलत हाथ में दे दी तो इसलिए अपनी स्वामिनी को लेकर के आओ तो हम उन्हीं को देंगे। कहते अच्छा चलो ठीक है। फिर वो उन्होंने श्रीमती राधा रानी से रिक्वेस्ट की, असल में वास्तव में ललिता सखी थी, ललिता सखी जो है फिर श्रीमती राधा रानी को लेकर के आई। फिर श्रीमती राधा रानी जब आई तो उन्होंने जो है जब श्यामानंद प्रभु से सेवा जब स्वीकार की तो उन्होंने उसी पायल को लेकर के उनके सर पे ऐसे लगा दिया। तो सर पे ऐसे लगाया तो उनके सर पे जो है ऐसे निशान बन गया, यहाँ नाक से लेकर के और ऐसे करके निशान बन गया। और वो जब गए, जब ऐसे निशान बन गया, राधा रानी कृपा प्राप्त हो गई उनको। और इस प्रकार से जब वापस गए तो श्री जीव गोस्वामी जी ने जो है उनको उनका आलिंगन किया, उनका स्वागत किया कि अच्छा श्रीमती राधा रानी ने स्वयं आपको दर्शन दिए, यह आपकी सेवा भावना से वास्तव में ऐसा संभव हुआ है और आपके गुरुदेव की कृपा है आपके ऊपर। उन्होंने कहा तो वास्तव में गुरुदेव की कृपा तो है ही है, श्रीमती राधा रानी कृपा तो है ही है, साथ ही श्री जीव गोस्वामी आपकी भी कृपा है। तो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु दोनों के आशीर्वाद हमें चाहिए होते हैं और फिर भगवान के दर्शन होते हैं, राधा रानी के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से इनको दर्शन जब प्राप्त हुए तो इनके यहाँ पर अब ये तिलक हो गया। अब ये बात जो है हृदयानंद जी या हृदय चैतन्य जी को पता लगी, और अब र्यूमर तो पता है गलत सलत तरीके से पहुंचती है, तो बताया जी आपके शिष्य ने नाम चेंज कर लिया है, जीव गोस्वामी ने उनकी दीक्षा कर दी है, उनका नाम हम श्यामानंद प्रभु कर दिया है, तिलक का डिजाइन चेंज हो गया है। र्यूमर्स या फिर तो बस, अरे हृदय चैतन्य इतने गुस्सा हो गए कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, हमारा गौड़ी वैष्णव का तिलक बदल दिया इसने और श्री जीव गोस्वामी ऐसा करेंगे। तो वो गए श्री जीव गोस्वामी को तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा कि तूने मतलब दोबारा दीक्षा ले कैसे ली और उसको इतना मारा अपने शिष्य को, लेकिन शिष्य ने कुछ नहीं बोला। शिष्य ने पिटाई खाई लेकिन शिष्य ने कुछ नहीं बोला। हमें से कोई होता तो बोल देता hey, please mind your own business। आपको पता नहीं मैं पंजाबी बाग के प्रॉपर्टी डीलर का बेटा हूं मैं। लेकिन श्यामानंद प्रभु ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा मुझे क्षमा कर दिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उनका गुस्सा जब शांत हुआ तो स्वयं श्रीमती राधा रानी ने इस बात को प्रकाशित किया कि श्री जीव गोस्वामी ने उनका दोबारा दीक्षा नहीं की है, जिसकी एक बार दीक्षा हो जाती है प्रमाणिक गुरु से उनकी दोबारा दीक्षा नहीं होती, और इस बात को श्री जीव गोस्वामी ने इसका उल्लंघन नहीं किया है। वो तो सिर्फ टाइटल देते हैं प्यार से स्नेहवश, तो इसलिए टाइटल दिया है बस, तो इसलिए उनको श्यामानंद करके जो है टाइटल दिया, इसलिए और कुछ नहीं। बाकी जो तिलक का डिजाइन चेंज हुआ है, तिलक का डिजाइन जो है उन्होंने खुद ने चेंज नहीं किया, वो तिलक का डिजाइन चेंज करने वाली डिजाइनर का नाम है श्रीमती राधा रानी। तो फिर हृदय चैतन्य ने प्रभु ने उन्होंने दंडवत प्रणाम कर लिया अपने शिष्य को कि भाई तू कितना सौभाग्यशाली है, कितना ज्यादा सौभाग्यशाली है। उनको दंडवत प्रणाम किया और फिर साथ ही उनको ये भी बात प्रकट हुई श्रीमती राधा रानी से कि उनका जो शिष्य है वो माधुर्य रस में है और वो हृदय चैतन्य खुद जो है वो साख्य रस में थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको आगे की टीचिंग्स में श्री जीव गोस्वामी से ही लेनी चाहिए, क्योंकि श्री जीव गोस्वामी जो है वो माधुर्य रस में है। और इस प्रकार से दीक्षा गुरु जब अप्रूव करते हैं तो फिर एक शिष्य गुरु के सानिध्य में रह करके व्यक्ति आगे भजन वगैरह कर सकता है। तो इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु को जो है उनको स्पेशल कृपा प्राप्त हुई श्रीमती राधा रानी की भी, हृदय चैतन्य की भी, हृदय चैतन्य प्रभु की भी, और साथ ही श्री जीव गोस्वामी जी की। तो आपका तिरुभाव दिवस है, आज हम प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में कि जिस प्रकार से उनकी शुद्ध भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए, श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हुई, वैष्णव जन प्रसन्न हुए, वैसे ही हम भी भक्ति कर सके, हम भी भक्ति कर सके जिससे कि भगवान खुश हो। या प्रभुपाद जी भक्ति में लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद ने सबसे पूछा बताइए इस हरे कृष्णा मूवमेंट का लक्ष्य क्या है। सब सोच रहे पता नहीं क्या है लक्ष्य। प्रभुपाद ने कहा दो शब्द, हरि तोषणम, हर वो कार्य करना जिससे हरि संतुष्ट हो, हरि खुश हो और साथ ही उनके भक्त खुश हों, बस हरि तोषणम। तो कभी हमें डाउट होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग सो डिफिकल्ट, वेरी सिंपल, मेरे इस कार्य से हरि उनके भक्त खुश होंगे या दुखी होंगे, दुखी होंगे नहीं करने का है, सुखी होंगे जबरदस्त तरीके से करने का, सिंपल डिसीजन मेकिंग बिकम सो सिंपल. अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वचन. तो आज हम उनके चरणों प्रार्थना करते हैं. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रवण पूजी की जय. उनके बहुत फेमस डिसिपल हुए रसिकानंद देव एंड ही वॉज वेरी मिस्टिकल वेरी पावरफुल प्रीचर. मतलब आज भी उनका यश है रसिकानंद. लेकिन उनको कृपा किससे प्राप्त हुई? श्यामानंद प्रभु से. तो अभी एक और सॉन्ग है क्योंकि आज का जो वर्स है उससे काफी कनेक्टेड है. सो विल सिंग दिस सॉन्ग सर्वस्व तोमार चरणे संपियन. जिसकी ट्रांसलेशन इस तरह से है, हमें इसकी ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे उसके बाद फिर गाएंगे तो ज्यादा मीनिंगफुली गा पाएंगे. नाउ दैट आई हैव सरेंडर्ड ऑल दैट आई पोजेस अनटू योर लोटस फीट. जो मुझे मेरे पास है मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ. आई थ्रो माइसेल्फ डाउन बिफोर योर हाउस. मैं आपके घर के सामने नतमस्तक होता हूँ. यू आर द मास्टर ऑफ द हाउस. उस घर के सामने जिस घर के मालिक आप हैं. काइंडली कंसिडर मी योर ओन डॉग. मुझे अपना कुकुर मानिए. क्लेमिंग मी नियर बाय. मुझको चेनिंग मी नियर बाय. मुझको अपने पास बांध करके रखिए. You will maintain me and I shall lie at your doorstep. और मैं पड़ा रहूंगा आपके दरवाजे पर. I'll not allow your enemies to enter. आपके दुश्मनों को अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा. But will keep them outside the bounds of surrounding moat. लेकिन आपके घर की बावर की बाउंड्री के बाहर रखूंगा उनको. Whatever food remnants your devotees leave behind. आपके भक्त जो भी उच्छिष्ट छोड़ेंगे उसको मैं पूरे मान सम्मान के साथ प्राप्त करूंगा. उसको सम्मानित करूंगा. और वो जो उच्छिष्ट हैं उन पे फिस करूंगा मैं. उन पे उनको बड़े आनंद होकर के उनका उनका आस्वादन करूंगा. वाइल सिटिंग अप एंड लाइंग डाउन आई विल कंसिडर आई विल कॉन्स्टेंटली मेडिटेट ऑन योर लोटस फीट. मैं चाहे बैठा हूं चाहे खड़ा हूं हर परिस्थिति में मैं आपके चरणों पे ध्यान करूंगा. व्हेनेवर यू कॉल आई विल इमीडिएटली रन टू यू एंड डांस इन रैप्चर. तो आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं नाश्ता नाश्ता आपके पास आऊंगा. आई विल नेवर थिंक ऑफ माई ओन नरिशमेंट. मैं अपने पोषण का कभी नहीं सोचूंगा. And will remain absorbed in ever cherishing love for my master. और जिसमें मेरे master, मेरे स्वामी खुशी है, चाहे मेरे गुरुदेव हो, वैष्णव हो या कृष्ण हो, हरि हो, इन हमेशा इनकी प्रसन्नता का सोचूंगा. भक्तिनाथ ठाकुर now accepts you as his only maintainer. भक्तिनाथ ठाकुर ने पूरी तरह से मान लिया है कि मेरे पोषणकर्ता जो है वो तो आप ही हैं. हे कृष्ण आप ही हैं. सर्वस्व तुमार चरणे संपिया पोड़े ची तुमार धारे. तुमी तो ठाकुर तुमार कुकुर बोलिया जान हूँ मोरे. बंधिया निकटे आमारे पालीबे रोहिबो तुमार द्वारे. आमार पालीबे रोहिबो तुमार द्वारे. प्रतीप जाने रे आसीते नदीबो रखिबो गणेर पारे. प्रतीप जाने रे आसीते नदीबो रखिबो गणेर पारे. तब निज जन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखिबे जहां. तब निज जन उच्छिष्ट राखी बेचाहा. आमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हबे ताहा. आमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हबे ताहा. बसिया शुइया तुमार चरण चिंती वो सतत आवी. तुमार चरण चिंती वो सतत आवी. नचीते नचीते निकटे जाइबो जखन दाखिबे तुमी. नाचीते नाचीते निकटे जाइबो जखन दाखिबे तुमी. निजेर पोषण कहुना भविबो रहिबो भावेर भोरे. निरपोष कहुना भविबो रोहिबो भवेर भोरे भक्ति विनो तुमारे पालक बोलिया वरण तोरे भक्ति विनोद तुमारे पालक बोलिया वरण तोरे सर्वस्व तुमार चरणे संपिया पूरे तुमार धरे तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जान हो मोरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि प्रभुपाद की जय श्रीमद्भागवतम की जय समस्त कथित भक्त वृंद की जय राय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद्भागवतम से पाठ कर रहे हैं, स्कंध है 8 और अध्याय है 22 और अध्याय का शीर्षक है बरी महाराज द्वारा आत्मसमर्पण और श्लोक संख्या 27। मनस्तंभ निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानां हन्तमुह्यनमत्परः मानस्तंभ निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानां हन्तमुह्येन मत्परः मानस्तंभ निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानां हन्तमुहो न मत्परः मानस्तंभ निमित्तानां Mataji's Vaishnavis. Shraddha Dharmada Tatpare Shri Prabhupada Yudhara Shri Prabhupada Ki Jai. Shraddha Atman Jhoti Pratishtata Stambham Is Drishta Ke Karan Nimittanam Karanoka Janma Adinam Uchkul Me Janma Adi Nimantataha Sam Milakar Ka जन्म आदि नाम सर्वश्रेय जीवन के परम लाभ के लिए प्रतिपानाम बाधाओं का हंत भी मुहयत मोहग्रस्त हो जाता है न नहीं मत परह मेरा अनन्य भक्त. अनुवाद. यद्यपि उच्च कुल में जन्म एवं अन्य ऐश्वर्य भक्त की उन्नति में बाधक होते हैं क्योंकि ये झूठी प्रतिष्ठा तथा घमंड के कारण है, किंतु ये ऐश्वर्य भगवान के अनन्य भक्त को कभी विचलित नहीं करते. तात्पर्य, ध्रुव महाराज जैसे भक्तों पर जिन्हें असीम भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त रहता है भगवान की विशेष कृपा होती है. एक बार कुबेर ने ध्रुव महाराज को वर देना चाहा, किंतु ध्रुव ने उनसे यही याचना की कि मैं भगवान की भक्ति करता रहूं. यद्यपि वे चाहते तो उनसे कितना ही धन मांग सकते थे. जब भक्त भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो भगवान को उसे भौतिक ऐश्वर्य से वंचित करने की आवश्यकता नहीं रहती. भगवान भक्ति के कारण अर्जित धन को कभी नहीं छीनते, यद्यपि वे कभी कभी पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित धन को हर लेते हैं. वे ऐसे भक्त को घमंड रहित करने के लिए या उसे भक्ति के बेहतर पद पर स्थित करने के लिए करते हैं. यदि भक्त का कार्य प्रचार करना हो, किंतु यदि वह अपने परिवार या ऐश्वर्य को त्याग कर भगवत सेवा नहीं करता तो भगवान निश्चित रूप से उसका ऐश्वर्य छीन लेते हैं और उसे भक्ति में स्थापित कर देते हैं. इस तरह शुद्ध भक्त कृष्ण भावनामृत के पूर्ण प्रचार कार्य में लग जाता है. ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपहदा मह्यं ददाति सुभदान्तिकं. वन्देहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सकल रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे समस्त देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरुदीन तारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं. हरे कृष्ण. तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही गहरा श्लोक है. इसका अभ्यास कर पाना निश्चित रूप से बहुत कठिन है. तो यहां बताया रहा है कि यद्यपि उच्च कुल में जन्म एवं अन्य ऐश्वर्य भक्त की उन्नति में बाधक होते हैं. तो बाधक तो होते हैं, ये बात तो माननी चाहिए कि ये तो बाधक तो है. पैसा हो, ऐश्वर्य हो, यश हो, अच्छी सेहत हो, सुंदर पत्नी हो, हैंडसम पति हो, आज्ञाकारी बच्चे हो, मंदिर के पास घर हो, वेरी कंफर्टेबल 5 BHK 10 BHK घर हो, सास माँ जैसी हो, ससुर बाप जैसा हो, आप भक्ति करेंगे? ना, मेरा घर वैकुंठ है, आई डोंट नीड दिस वैकुंठ. इसीलिए अक्सर ये चीजें तो बाधक तो बनती हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है. अच्छा, अपवाद भी है, इसमें एक्सेप्शन भी है. ओके, एक्सेप्शन ये है, किंतु ये ऐश्वर्य भगवान के अनन्य भक्त को कभी विचलित नहीं करते. तो भगवान के भक्त इससे विचलित नहीं होते. और यहां ध्रुव महाराज से एग्जाम्पल दिया जा रहा है. ये वो ध्रुव महाराज है जिन्होंने की राजपाट भी संभाला, राइट, इनका विवाह भी हुआ, राइट. प्रहलाद महाराज भी सिमिलरली ऐसी हैं, उनका उनका भी एग्जांपल आता है. कि बड़ा उन्होंने भाई ऐश्वर्य काफी समृद्धिमान था, प्रहलाद महाराज का जो सारा ऐश्वर्य था, और उन्होंने विवाह भी किया, घर गृहस्थी भी बसाई उन्होंने। और ये वही भक्त हैं जो बोलते हैं गृहम अंधकूपम, जो बोलने वाला गृहम अंधकूपम उसने खुद ही घर बसा लिया अपना, अरे ऐसे कैसे। तो इसीलिए यहां पर श्लोक आ रहा है कि ऐसे भक्त इन चीजों में फंसते नहीं है, भले ही चारों ओर इन चीजों से घिरे हुए होते हैं, अरे स्वामी जी, भले ही ऐसे लोग चारों ओर जो है ऐसे ऐश्वर्य से घिरे हों, इन बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, बहुत अच्छी उसकी जॉब हो, लेकिन इन चीजों में वो फंसते नहीं है। तो इसीलिए यहां पर जो एग्जाम्पल आ रहा बड़ा अप्रोप्रिएट है, ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं शास्त्रों में जहां पर कि व्यक्ति को हर तरह की फैसिलिटी है लेकिन वो इन फैसिलिटीज के द्वारा आकर्षित नहीं होता है, इनके द्वारा उसका पतन नहीं होता, उसकी भावनाएं जो है गिरती नहीं है। तो क्यों ऐसा, जो भक्त होता है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आते हैं शास्त्रों में कि भक्तों में ऐसा पाया जाता है कि भक्तों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, राइट। तो ऐसे कई सारे उदाहरण है जिनके ऊपर आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जब कई सारे बाबा जी थे और वहां पर वो जो बाबा जी थे वो क्या हमेशा पैसे के पीछे भागते थे, स्त्री के पीछे भागते थे, और इस तरह का उनका बड़ा गलत व्यवहार था, तो लोगों ने गौड़े वैष्णविज्म को बड़ा ही निकृष्ट मानते थे कि अरे अच्छा वैष्णव, ओ लो क्लास। तो बंगाल में ऐसी इमेज हो गई थी, तो क्योंकि जो है भक्तों का पूरी इमेज खराब हो गई थी। तो एक दिन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने बड़ा सूट बूट पहन लिया, चमकते हुए कपड़े पहन लिए, धोती वगैरह कोट वगैरह पहन लिया उन्होंने, और भक्तिवन ठाकुर जी के पास आ गए। भक्तिवन ठाकुर ने कहा बाबा जी महाराज ये आज कौन सा वेश धर के आया। कहते हैं कि बजाय कि इसके मैं कपटी पाखंडी बनूं, इससे बेटर है कि मैं ये ऐश्वर्यशाली कपड़े पहन करके मैं भजन करूं। ऑफकोर्स उनका मैसेज था कि भक्तों को कपटी नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में उनसे हमको ये मैसेज मिलता है कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जैसे लोग जो है, अगर वैष्णव जो होते हैं, अगर ये ऐश्वर्यशाली कपड़े पहन लें तो भी इनके भजन के ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस तरह से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब उनको उनका पता लगा था कि राधा कुंड में जाकर के प्रवचन देने वाले, तो बड़े बहुत हुजूम लगा कि ओके भक्ति विनोद ठाकुर का स्कॉलरली पुत्र जो है आकर के लेक्चर देने वाला है, तो धमाल हो जाएगा। लेकिन वो आए गाड़ी में सूट बूट पहन करके, तो लेकिन आपको धोती कुर्ता पहना हुआ ना, लेकिन ऊपर से कोट पहन करके आए थे, नीचे शूज पहन करके आए थे। अरे अच्छा केदारनाथ दत्त जी का ये बेटा है क्या, चलो कोई नहीं, आया तो है फिर वो रास के बारे में बताएगा। और उन्होंने तत्व की चर्चा की, भगवत गीता, ईशोपनिषद, इनकी ऊपर चर्चा की, भागवतम की चर्चा की। तो लोग घूम गए, अरे ऐसे कैसे हो गया, क्या करें, ये ऐश्वर्य तो अच्छा अच्छा घुमा देता है भाई। तो इस तरह से बिमला प्रसाद जो है उनको भी घुमा दिया होगा ना। भगवान के भक्तों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता नहीं है। ये भक्ति साहब हमारा तो फिर भी कार में गए, श्रील प्रभुपाद जी तो फ्लाइट में गए, क्योंकि फ्लाइट का फर्क पड़ जाए इनके ऊपर। फ्लाइट का फर्क भी नहीं पड़ता, फ्लाइट में जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। नौसखिया भक्त जाएगा तो फ्लाइट का गलत इस्तेमाल कर लेगा, है ना, एयर होस्टेस को देखेगा, है ना, उनसे पूछ भी लेगा, अच्छा ये बताओ और तो कोई नहीं है यहाँ पर जो मेरे जैसा दिखता हो, कहते नहीं आप ही हैं इकलौते, कहते फिर ठीक है फिर ले आओ जरा दो चार आइटम पड़ी ऐसे ही। नौसखिया भक्त कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी जो है वो फ्लाइट में ट्रेवल भी किए, तो फ्लाइट का भी उनको फर्क नहीं, वही ऐश्वर्य है, ठीक है। प्रभुपाद जी के बड़े बड़े सिंहासन बनाए जाते थे, प्रभुपाद जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रभुपाद जी एक बार एक एयरपोर्ट में बैठे थे, जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क, बहुत बड़ी एयरपोर्ट है, बहुत अच्छी एयरपोर्ट है वैसे। तो भक्त ने कहा श्री प्रभुपाद एक दिन हमारी भी ऐसी एयरपोर्ट होगी। प्रभुपाद ने कहा क्या मतलब तुम्हारे कि एक दिन ऐसी हमारी एयरपोर्ट होगी, ये हमारी तो एयरपोर्ट है, क्या सब कुछ कृष्ण का है और हम कृष्ण के दास हैं, तो जो मालिक का होता है उनके सर्वेंट का भी होता है, तो ये हमारी एयरपोर्ट है, कोई नया एयरपोर्ट थोड़ी खरीदेंगे अभी हम लोग, ये हमारी एयरपोर्ट, दिस इज आवर एयरपोर्ट। ऐसे प्रभुपाद जी एक बार लिमोजिन किसी ने गिफ्ट की थी प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी को लिमोजिन गिफ्ट की, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो ये लिमोजिन बड़ी खाली खाली दिख रही है, इसके ऊपर लिखो हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये ऐश्वर्य प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी लिमोजिन से उतरे तो किसने बोला स्वामी जी कैसे लगता है आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, इस तरह से अच्छा तो लगता होगा आपको कि भाई जितने की आपकी विसाद नहीं थी उतनी बड़ी गाड़ी में आप घूम रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा मैं कृष्ण का प्रतिनिधि हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, अगर तुम सोने की कार भी अगर मेरे लेकर के आते हो तो मैं चलो मैं लिमोजिन में काम चला लेता हूं। लेकिन असल में वो सोने की कार भी लेकर आप ना, अगर खरे सोने 24 कैरेट खालिस गोल्ड की, इवन देन वो भी कम है, क्योंकि मैं ना कृष्ण का प्रतिनिधि हूँ, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण. तो प्रभुपाद जी की जो थी, दिस वाज ट्रांसेंडेंटल, प्रभुपाद जी का जो था ना ये ऐश्वर्य, इट वाज वेरी ट्रांसेंडेंटल. तो भक्त जो होता है वो इन चीजों का फंसता नहीं है. प्रभुपाद जी जब को ना डॉक्टर ने मना किया था कि आपको डाब नहीं पीना, प्रभुपाद जी को प्यास लगी, प्रभुपाद ने डाब खोला, डाब कर डुक 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 डुक, और उनकी सेक्रेटरी आई पालिका माता जी, कहती प्रभुपाद ये आपने डाब, आपको पता डॉक्टर ने मना किया है. प्रभुपाद दूसरा डाब लिया, उसकी आंखों के सामने डुक 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 डुक. प्रभुपाद ने कहा इन माय होल लाइफ आई डिड व्हाट आई वांटेड, मैंने पूरे जीवन वही किया जो मेरे को पसंद था, मैंने किया. एंड आई एम नॉट डॉक्टर दास, आई एम कृष्ण दास. तो ये प्रभुपाद जी का ऐश्वर्य, कोई फर्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट प्रभुपाद जी जब अपने गृहस्थ जीवन जब बता रहे थे, वो जब लीला कर रहे थे उस वक्त क्या है, वर्ल्ड वॉर टू चल रही है और प्रभुपाद जी कचौड़ी खा रहे हैं, एक और कचौड़ी लिखा, कचौड़ी बढ़े कचौड़ी खा रहे हैं. तो भार ऊपर हो नीचे हो, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ हो जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता. एक बार अखबार में एक मायावादी की तस्वीर छुपी थी, उसने क्या था पैसा यहां रखा हुआ था और उसने ऐसे तस्वीर खिंचाई थी कि उसको बहुत ऐसे. प्रभुपाद ने अखबार खोला, प्रभुपाद ने देखा तस्वीर, देखी, कहते देखो ये बोगस आदमी का, कहते मेरी ये फोटो खींचो, पैसा मेरे सामने रखना, एक तस्वीर होगी मैंने ऐसे हूं ठीक है, और दूसरी तस्वीर खींचा मैं ऐसे लेकर कृष्ण को दे रहा हूं. दिस इज रियल वैराग्य. तो भगवान के जो भक्त होते हैं क्या, सर्वस्व तोमार चरणे समर्पय, क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं इस कॉन्शियसनेस से पूरी तरह से सोक्ड है, डिप्ड है कि वहां से मेरा जो कुछ भी है वो तो कृष्ण का है, जो मेरे पास है वो आसमान से कुछ कृष्ण का है. तो इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं भले ही उनके पास ऐश्वर्य आता है लेकिन फर्क नहीं पड़ता. प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर टेम्पल में थे तो किसी ने प्रभुपाद जी को पार्कर का पेन गिफ्ट किया. तो प्रभुपाद जी पार्कर पेन तो अच्छा होता है, रेनल्ड्स का या स्टिक का 2 रुपए पर किलो वाला नहीं, उस वक्त पार्कर, उस वक्त पार्कर तो पार करिए. प्रभुपाद जी ने कहा इस पार्कर पेन से मैं बहुत तात्पर्य लिखूंगा जो भव सागर से पार कराएंगे लोगों को. तो पार कर, भव सागर को पार कर, कैसे तू पार कर. अब ये नहीं है कि भाई पार कर पेन आ गया तो फिर प्रभुपाद जी घबरा जाएंगे, दिस इज टू मच ऑफ ऑपुलेंस, तो फिर इसमें मेरा फॉल डाउन हो जाएगा फिर नहीं. तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो इससे बिल्कुल भी विचलित होते नहीं है. जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं भक्ति चारू महाराज हमेशा बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं. तो एक डिवोटी ने पूछा था प्रभु जी बिजनेस क्लास महंगा होता है और महाराज हमेशा बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं, ये काफी अचिंत्य है मेरे लिए. मैंने कहा इसमें कुछ अचिंत्य नहीं है, बहुत सिंपल है, वो बिजनेस क्लास के लोगों को प्रीचिंग करते हैं महाराज, वेरी सिंपल. और महाराज वॉज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल. तो महाराज को जो 3 महीने के अंदर ही जो है डबल दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई थी, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, संन्यास, ये तीनों हो गए. तो किसने पूछा प्रभुपाद जी, कहता प्रभुपाद जी अगर ऐसा हो गया, इनका फॉल डाउन हो गया तो 3 महीने में आपने सब कुछ कर दिया, कोई भक्ति शास्त्री नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, इस्कॉन डिसिपल्स कोर्स वगैरह कुछ नहीं, सीधे दीक्षा. तो प्रभुपाद जी ने कहा सी अगर उसका फॉल डाउन भी अगर होता है, एट द मैक्स उसका फॉल डाउन होगा तो सतगुण में आ जाएगा, यानी कि महाराज शुरू से दिव्य धरातल पर थे. तो अगर फॉल डाउन महाराज का अगर फॉल डाउन हो जाएगा तो सतगुण में आ जाएंगे, लेकिन महाराज हमेशा से दिव्य थे, भक्ति चारों महाराज वाज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटल. तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं उनके ऊपर ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं पड़ता. उनके पास चाहे फॉर्चुनर गाड़ी हो, मर्सिडीज गाड़ी हो, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता. वो उसको भगवान की सेवा में लगाए थे, कहते प्रभु ये जो गाड़ी है ये आप प्रेमानंद को देते हैं, प्रेमानंद को कैन यूज इट फॉर प्रीचिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, सो दैट ही कैन यूज इट. अच्छा रॉलेस की घड़ी क्या पहन सकते हैं, ऑफ कोर्स भगवान के भक्त पहन लेते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं. उसमें टाइम देखते हैं कि कब हमें उन्हें टाइम से ऑर्डर खोलना है, कब उनको जो है टाइम से कीर्तन शुरू करना है, और एकादशी पालन का समय क्या है, सिंपल. तो इसलिए भगवान के भक्त होते हैं क्यों, क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण में रमी हुई है, इसीलिए इन चीजों से विचलित नहीं होते. और इसी संदर्भ में जो भगवान गीता में कह रहे हैं क्या, 7वें अध्याय के 28वें श्लोक के अंदर, येषां त्वन्तगतं पापं जननां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते मां दृढव्रत. तो ऐसे जो भक्त हैं जिनके की पाप तो नष्ट हो चुके हैं और साथ ही इनके पुण्य भी नष्ट हो चुके हैं, होता क्या है, व्यक्ति को ना अगर व्यक्ति के पाप नष्ट हो गए, भजन से आज की होता है सीक्वेंस यही है, जब भजन करते हैं चैन हरे कृष्णा, सबसे पहले पाप कर्म नष्ट होते हैं और पाप कर्मों के फल नष्ट होते हैं, क्योंकि उससे दुख आता है ना, तो सबसे पहले तो भक्ति जीवन से दुख निकाल देता है हरि भजन। फिर क्या है, लेकिन पुण्य बाद में नष्ट होते हैं, लेकिन पुण्य बाद में नष्ट होते हैं, लेकिन पुण्य का साथ चैलेंज क्या है कि पुण्य जो होते हैं जीवन में भोग लेकर के आते हैं, भोग की वस्तु भी सामने होगी, भोग की इच्छा भी होगी और भोग का वातावरण भी होगा, ये तीनों चाहिए, इनमें से कोई एक ना हो तो भोग नहीं कर सकते, भोग का वातावरण भी चाहिए, भोग की वस्तु भी चाहिए और भोग की इच्छा भी चाहिए, ये तीनों के तीनों जो है आ जाते हैं, और ये तीनों आते हैं तो भजन में दिक्कत देते हैं, है ना। इसे कई बार आते हैं नए नए भक्त होते हैं, आते हैं हार्ट में शेयर करते हैं, ये भक्ति तो कर रहा हूं लेकिन ना मैं बहुत गिरा हुआ आदमी हूं, मैं बहुत ज्यादा गिरा हुआ हूं, बहुत ज्यादा गिरा हुआ हूं, मैं इतना ज्यादा गिरा हुआ हूं, इतना ज्यादा गिरा हुआ कि बस मैं गिरते जा रहा हूं, गिरते जा रहा हूं, मैं बस पताल से भी नीचे जाए जा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा गिरा हुआ हूं। मैं क्यों, क्या होगा, ऐसा क्या होगा? प्रभु जी, मैं इंद्र तृप्ति करता हूं, मैंने बोला नियम आगे पीछे करता हूं, मैंने इंद्र तृप्ति करता हूं, मैं बहुत गंदा हूं, पापी हूं मैं। तो जीवन में भोग भला कौन लेकर के आते हैं? पुण्य लेकर के आते हैं। इसे तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर पुण्यों के कारण अगर भक्त के जीवन में भोग आते हैं तो भगवान जो है उसकी उतार देते हैं हर अच्छे से। तो कुछ समय के लिए हो सकता है भक्तों के समाज से वो भक्त डिसअपीयर हो जाए, कहते प्रभु वो नजर आते थे अब वो नजर नहीं आते, क्या हो गया उनका? कुछ नहीं, भगवान अपने ऑपरेशन थिएटर में लेकर के गए हैं उसको, प्यार से ऑपरेशन करेंगे उसका, और पुण्यों के कारण जो भोगों की वृत्ति गहरी होती जा रही है उसको निकाल देंगे, और फिर कुछ समय बाद फिर से नजर आना शुरू हो जाएगा, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डिड नॉट डाई, पेशेंट बच गया। तो इसीलिए पुण्यों के कारण भी जो है दिक्कतें आती भजन में, तो पहले पाप कटते हैं और फिर पुण्य कटते हैं, और इस सीक्वेंस में जब चलता है तो सारे हिसाब किताब फिर वो अच्छा अच्छा रहता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ये ना तो पाप से प्रभावित होते हैं, पुण्य भौतिक पुण्य तो इनके जीवन में रहे नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक सुकृतियां या श्रद्धा या भक्तिमय सुकृतियां वो रह गई। अब उस वजह से क्या होता है, इनका जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है उन्हीं में ध्यान लगता है बस, और किसी में इनका ध्यान नहीं लगता, और ऐसा भक्ति जो है वो वरिष्ठ वैष्णव के द्वारा चुना जाएगा एज ए लीडर। लीडर के लिए बड़ा जरूरी है कि वो यश के द्वारा प्रभावित ना हो, धन से कंफर्ट से प्रभावित ना हो, ऑपोजिट जेंडर से प्रभावित ना हो, अगर हो जाएगा तो लीडर बनने के लायक नहीं है। और अक्सर जो नौसखी होते हैं जिनमें कई बार लीडर बनने की बड़ी इच्छा होती है कि हम भी लीडर बनेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन लीडर बन जाएंगे, लीडर का मतलब होता है लीडर इन श्रवण एंड कीर्तन। जो श्रवण कीर्तन में लीडर है असल में वही लीडर है, पावर पोस्ट पोजीशन से कोई लीडर नहीं बनता। तो पावर पोस्ट पोजीशन को देख करके लीडर बनता है वो कभी भी हिल जाएगा, वो इन चीजों से प्रभावित होगा, ऐश्वर्य से प्रभावित होगा, नाम से प्रसिद्धि से प्रभावित होगा, होगा। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो जानता है क्या, ना धनम ना सुंदर्य। अच्छा भगवान पूछते हैं, अच्छा ऐसा वक्त इतना सॉलिड हो लिया तू, मेरा भक्ति भजन कर रहा था तो धन जी होगा, कहते ना धनम, धन जी है, अरे खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल किसी का मत दिखाओ, बस धन तो चाहिए उधर को, नहीं धन जी। अच्छा ठीक है जन्म देखो, लोग तो चाहिए होंगे, बोले प्रभु जी आप बड़े अच्छे हैं, आपके यूट्यूब में हमने सुना आप बड़े महान हैं, आप ये हैं वो हैं फला है ढिमका है, अच्छा लगता है ईगो को ना, अहंकार को अच्छा। जन्म देखो, जन चाहिए ना, फॉलोअर्स जो आए प्रभु जी एक ऑटोग्राफ कर देंगे प्लीज, AL दास अच्छा लगता है, ना जन्म पे ऐसा क्या, ना जन्म धन भी चाहिए, जन्म भी चाहिए, सॉरी ठीक, एक चीज तो सबको पसंद है सुंदरिम, हाँ सही है ना, इसे तो मेरा भजन कर रहा है, राइट इसे करा ना सुंदरिम, ओए तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे को ना धन चाहिए, ना तेरे को जन चाहिए, ना तेरे को सुंदरी चाहिए, तेरी बुद्धि खराब हुई क्या, मोक्ष चाहिए तेरे को, मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहिए ना, मोक्ष चाहिए तो राइट वही चाहिए। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, कितना अच्छा, मोक्ष भी नहीं चाहिए तेरे को तो क्या चाहिए तेरे को, अहित की भक्ति त्वई। अरे इसका इंटरव्यू लो, इसको ना धनम चाहिए, मैं धन देता हूं बिना इंटरव्यू के, जन्म देता हूं बिना इंटरव्यू के, सुंदरी देता हूं बिना इंटरव्यू के, मोक्ष भी देता हूं बिना इंटरव्यू के, पर भवता भक्ति अहित की त्वई, इसके लिए तो इंटरव्यू बनता है क्योंकि भक्ति से बंध जाता हूं। तो ऐसा जो भक्त है जो ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहितुकी त्वई, ऐसा भक्त जो है वो आस में प्रभावित नहीं होता। जब यश आएगा तो अरे यश, ये यश तो वास्तव में गुरुदेव की कृपा से है, गुरुदेव श्री प्रभुपाद ये आपकी वजह से है इसलिए ये यश आया है ये आपके चरणों में। अच्छा धन, अरे धन तो विष्णु को शोभा देता है, ऐश्वर्य किसके पास है, विष्णु नारायण, धन विष्णु आपके लिए। अच्छा सुंदरिम, अरे सुंदर, अच्छा स्त्रियां तो देखो शोभा तो ये राधिका रमन जी को देती है इसलिए जितनी स्त्रियां इनके पास है उतनी किसी के पास नहीं है, और जो असली स्त्रियां हैं वास्तव में उन्हीं के पास है और सारी स्त्रियां इनके पास खुश हैं, एक भी स्त्री ने कभी FIR दर्ज नहीं कराया कि मैं बाकी स्त्रियों की वजह से इसे ना खुश हूं। तो स्त्रियां तो शोभा देती हैं तो इसी व्यक्ति को देती है, तो स्त्री बिलोंग्स टू कृष्ण, वेल्थ बिलोंग्स टू विष्णु एंड फेम बिलोंग्स टू गुरु एंड नाउ आई एम सेफ। अब ऐसे भक्त के ऊपर जन्म का ऐश्वर्य का यश का प्रतिष्ठा का प्रभाव नहीं पड़ता और ऐसा भक्ति वास्तव में लीडर बनने के लायक होता है। ऐसे भक्ति लीडर हो जैसे हमारे लिए यहां पर लीडर है इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी ने क्या किया हुआ है, उन्होंने यश को गुरु की सेवा में दिया है ना, और माताओं की सेवा करते तो राधिका रमन जी की है, और जो भी उनके पास ऐश्वर्य आता है वो सारा जो है वो ठाकुर जी की सेवा में दे देते हैं वो। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति ही लीडर बनने के लायक है। आज इस समय इंडिया में नंबर वन कहें दुनिया में नंबर वन कहें चाहे कैसे भी नंबर वन कहें, अगर आज पंजाबी बाग टेम्पल इतना छाया हुआ है उसके पीछे जो उसमें आत्मा फूकने वाले लीडर का नाम है हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी। तो ऐसे वैष्णव के प्रति हम हमेशा ऋणी थे ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे क्योंकि उन्होंने भक्ति के ऋण से हमारी धुलाई की है। So, ऐसा भक्त जो होता है उसके प्रति हमें हमेशा ऋणी रहना चाहिए, हम इनका कभी ऋण चुका नहीं सकते, कभी नहीं ऋण चुका सकते। ट्रांसेंडेंटल ऋण से उन्होंने सफाई की हमारी, हमारे हृदय की सफाई की, हमारे मस्तिष्क की सफाई की है। सो दैट इज वी आर ऑलवेज ऋणी, वी आर ऑलवेज इंडेक्टेड टू सच डिवोटीज। क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट समवन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर, किसी का चरित्र अगर परखना हो उसको थोड़ी पावर दे देनी चाहिए, क्योंकि पावर आती है तो सर्वे घूम जाती है और सर्व घुमा देती है वो, तो हमारे पास पावर है हम किसी से कम नहीं, अब तुम सबसे कम हो गए बेटा, अब तुम सबसे कम हो गई है। तो इसीलिए जिसकी भावना बड़ी शुद्ध होती है निस्वार्थ भाव से सेवा करता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर धन ऐश्वर्य इसका प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हाँ नौसखीय भक्त को इससे शिक्षा ये लेनी चाहिए कि यह श्लोक मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये कार्य व्यक्ति तभी कर पाता है जब वो युक्त वैराग्य का अभ्यास करता है। युक्त वैराग्य यानी कि युक्त वैराग्य मतलब होता है कि हर वस्तु को कृष्ण की सेवा से संबंधित देखना और इस तरह से हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना, तो ये जो है इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। लेकिन युक्त वैराग्य का अभ्यास वाला कौन कर पाता है, युक्त वैराग्य का अभ्यास वो कर पाता है जिसमें वैराग्य होता है, जिसमें वैराग्य नहीं होगा तो क्या करेगा वो, युक्त वैराग्य के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करेगा। उदाहरणार्थ एक बार मैंने एक भक्त को वीडियो गेम खेलते पकड़ लिया, वो स्मार्टफोन पे वीडियो गेम खेल रहा था, कॉइन्स इकट्ठे कर रहा था, उसपे 1,00,000 सिक्के इकट्ठे कर लिए तो जो ढेला पड़ेगी नहीं थे। तो मैंने कहा प्रभु आप ये वीडियो गेम खेल रहे हो ये सही है क्या, कहते प्रभु जी एक्चुअली चैंटिंग करते वक्त मेरा ना फोकस कॉन्सेंट्रेशन मेरी बहुत खराब हो चुकी है, वीडियो गेम खेल कर गया मेरा फोकस एकदम, तो मैं उस फोकस से फिर मैं चैंटिंग करूंगा तो इसलिए फिर मैं युक्त वैराग्य या भुक्त भोग। तो इस प्रकार से युक्त वैराग्य नाम पे सेंस एडिशन। और क्या मैंने सुना है आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं प्रचार करना होता है ना, आजकल दुनिया व्हाट्सएप पर है, आजकल दुनिया फेसबुक पर है, इसीलिए मैंने अपना अकाउंट बनाया, नॉट दैट कि मैं वहां पर टाइम वेस्ट करता हूं. मैं वहां बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करता, मैं घंटों बिताता हूं फेसबुक के ऊपर, घंटों बिताता हूं और मैं व्हाट्सएप के ऊपर प्रचार हेतु. ये बात और है कि उसकी वजह से मैं आजकल भागवतम और चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ पाता, लेकिन हाँ मैं प्रचार हेतु. मेरे मन में ऐसा नहीं कि भूख की इच्छा हो, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, कभी कभी वीडियो देख लेता हूं, उसमें अच्छे अच्छी वीडियो आते हैं, वह भक्त पोस्ट करते हैं, प्रभु जी भक्त पद धुली भक्त भुक्ताविशेष, ये उनके भुक्त अवशेष हैं, उन्होंने देख करके आगे पोस्ट किया ना इसको, भक्त भुक्ताविशेष भक्त पद एवरी तीन महाबल. तो इन वीडियो महाबल, ये महाबल तेरे को निर्बल कर देगा. तो इसीलिए ये जो श्लोक है ये क्या है, नौसकीय भक्तों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. और जैसे गलत इस्तेमाल करते हैं हम लोग युक्त वैराग्य का, फॉर एग्जाम्पल गोइंग बाय ट्रेन और गोइंग बाय फ्लाइट. क्या कोई अर्जेंट बैठा है? नहीं, अर्जेंट तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फ्लाइट अच्छी रहती है, दिस इज कंफर्टेबल. ट्रेन क्या है, यहां से मायापुर जाना 24 आवर्स, इट्स जस्ट टू मच. तो इसीलिए ट्रेन में नहीं जाएंगे, हमने ये ट्रेनिंग ली है कि हम फ्लाइट में जाएंगे, फ्लाइट में जाते हैं. अच्छा, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? कहते हैं ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो गरीब लोगों के लिए. मैं तो बहुत, आई एम वेरी स्पेशल डिवोटी, आई एम वेरी VIP डिवोटी, VIP वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन. लेकिन व्यक्ति जब अपने आपको VIP समझते कहता है फिर आई ओनली यूज व्हीकल, आई डोंट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ऐसे हमारे कई सारे डिवोटीज हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करते. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना इतना लाभदायक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डिपेंडेंसी चलेगी कि गाड़ी अवेलेबल है नहीं है. दूसरा एडवांटेज, फोकट की एडवर्टीजमेंट लोग देते हैं, अरे हरे कृष्ण इस कौन, हरे कृष्ण पंजाबी बाग द्वारका ईस्ट ऑफ कैलाश वैदिक एक्सपो, फोकट की एडवर्टीजमेंट. थर्ड, आज साधु समाज की इमेज बड़ी खराब हो चुकी है, कह रहे साधु कारों में घूमते हैं लोग, लेकिन जब वो साधु देखेंगे मेट्रो में कहने हाँ थोड़े साधु थोड़े सुधर रहे हैं, मैं थोड़े साधु सुधर रहे हैं. तो साधु समाज की जो है इमेज भी अच्छी होती है, चाहे कोई व्हाइट में जाए कोई सैफ्रॉन में जाए, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना तो वहां दैट शो, अगर कोई अर्जेंसी देन वन में यूज ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन ये भी युक्त वैरागी का जो है यूज या मिसयूज होता है. ओके, टॉकिंग इंटीमेटली विद ऑपोजिट जेंडर ऑन द नेम ऑफ प्रीचिंग, प्रचार के नाम पे ऑपोजिट जेंडर से इंटीमेटली बात करना. कॉन्ग्रीगेशन टीचर, और क्योंकि मैं कॉन्ग्रीगेशन टीचर हूं इसीलिए मैं खुल करके आराम से रोमियो टाइप स्टाइल में फ्री स्टाइल होकर के मैं ऑपोजिट जेंडर से बातें कर सकता हूं, क्योंकि ना यू नो आई एम अ कॉन्ग्रीगेशन प्रीचर. युक्त वैराग्य के नाम पर इंद्रिय तृप्ति. तो इसीलिए भक्तों को चाहिए कि हमें ये जो श्लोक है ये काफी उन्नत वैष्णवों के लिए है. हमारे ऊपर ऐश्वर्य का प्रभाव पड़ता है, हमारे ऊपर कंफर्ट का प्रभाव पड़ता है, हमारा अगर जन्म बड़े अच्छे कुल में हुआ उसका प्रभाव पड़ता है. सो दैट इज दिस वर्स इज फॉर वेरी एग्जॉल्टेड वैष्णवास, बड़े उन्नत वैष्णवों के लिए है. लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए युक्त वैराग्य का प्रयोग हम तब कर सकते हैं जब हमें वैराग्य होगा, नहीं तो हम युक्त वैराग्य के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करेंगे. हरे कृष्णा. किसी को प्रश्न है? किसी को प्रश्न है? एक यस कमल चंद्र प्रभु माइकल.
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु.
धन्यवाद.
प्रश्न स्टैंडर्ड है बट फिर भी आपसे सुनने में कुछ और सीखने को मिलेगा कि जैसे आप बता रहे थे ये सब प्रलोभन तो हैं हमारे जीवन में, भक्ति में जीवन में भी बाधक हैं, धन ऐश्वर्य यश सुंदरम जन, तो और बार बार ऐसी चुनौती फेस भी करने को मिलती है. तो हम क्या सेफगार्ड्स रख सकते हैं अपने भक्ति में जीवन में, ताकि हम, क्योंकि जाने अनजाने में कभी हम लाइन क्रॉस ना करें या कभी हम मुश्किल में ना आए, तो क्या सेफगार्ड रख सकते हैं ताकि हम इस चीज़ से अपना
सेफगार्ड? तो बस एक ही है, जो भी आपने प्रश्न पूछा ना बस ये प्रश्न हमने आपसे पूछते रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे हमेशा, कि मुझे कभी लाइन क्रॉस नहीं करनी. तो अगर हम ये अपने मन में रखेंगे अपनी चेतना में रखेंगे देन वी विल नॉट क्रॉस लाइन. और दूसरा क्या, अपना हृदय हमेशा वैष्णवों के सामने खोलते रहना चाहिए. कम से कम एक ऐसा व्यक्ति हो जो हमारी पूरी पोल पट्टी जानता है. तो ऐसे अगर वैष्णव हमारे जीवन में रहेंगे तो क्या हुआ, तो कभी भी हम वो कार्य नहीं करेंगे जिसको रिपोर्ट करने में शर्म आए. अगर जीवन में एक भी ऐसा वैष्णव नहीं है जो कि हमारी सारी पोल पट्टी जानता हो तो फिर हम शायद कुछ छुपा भी जाएंगे, राइट। सो दैट मीन्स हमारे जीवन में ऐसे वैष्णव होने चाहिए, निष्कपट वैष्णव होने चाहिए, और उनसे जब हमने हृदय खोलेंगे तो हमेशा वो कार्य करेंगे जिनसे कि वो प्रसन्न होंगे, राइट। तो हम ये लाइन को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। बाकी ये कि हमें दूसरे भक्तों से सीखना चाहिए, दूसरे एग्जाम्पल से सीखना चाहिए कि जब किसी ने लाइन क्रॉस की तो उसके साथ क्या हुआ, तो वैसा मेरे साथ ना हो, तो दूसरों के उदाहरण से भी हमें सीखना चाहिए कि मुझे नहीं करना ऐसा। बाकी जितनी ज्यादा हम त्रिनादपि सुनिश्चना के भाव में रहेंगे हम लाइन अपने आप क्रॉस नहीं करेंगे। ये मैजिकल वर्स है, ये जादुई है ये श्लोक, त्रिनादपि सुनिश्चना तरोरपि सहिष्णुना आमानि न मान देना कीर्तिनि हस्ता हरि। ओके यस
हरे कृष्ण। तो ठीक है, बड़ों का तो वैराग है, जो हमारे सीनियर्स हैं उनके तो वैराग है, इसलिए वो उसको लाइक उसमें होकर भी उसको वोट नहीं करते हैं, लेकिन जूनियर्स अक्सर उनकी कॉपी करते हैं। मतलब अगर बड़े करेंगे तो जूनियर्स को देख के फिर वो भी
यस,
क्योंकि भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में, लेकिन मैं जैसा करता हूँ वैसे उसको लोग
देखो सी बात फिर,
तो मतलब लाइक उसमें अगर लाइक अक्सर ये एक्सक्यूज दे सकते हैं जूनियर्स के, सीनियर्स भी तो ये वो फ्लाइट पे जा रहे हैं तो फिर, लेकिन वो तो वैराग में है ठीक है, वो उसको भोग नहीं कर रहे।
या दैट्स ट्रू, फिर
लेकिन वो फिर इससे उनके पास एक्सक्यूज हो जाएगा ना उनके पास।
हाँ या एक्सक्यूज है वो, दैट्स ट्रू,
फिर लाइक फिर वो भी इसको कॉपी करेंगे तो फिर, लेकिन एक्चुअली वो वैराग में नहीं है
बिल्कुल,
लेकिन वो फंस जाएंगे।
गलत बात है, बिल्कुल फंस जाएंगे, बिल्कुल सी बात, दैट्स ट्रू, नाइस, थैंक यू। प्रश्न तो नहीं था ना,
यही प्रश्न है कि एटलीस्ट सीनियर्स को एग्जांपल रोल मॉडल प्ले करना चाहिए ताकि वो जूनियर्स उनको एज इट इज फॉलो।
ऑफ कोर्स, तो सीनियर्स तो प्ले करती हैं एज अ रोल मॉडल, और जूनियर्स को बचिए वो कॉपी ना करें। इनफैक्ट कभी ऐसा भी होता है कि जो सीनियर्स हैं दे मे ट्रीट अस वेरी फ्रेंडली, इवन गुरु भी ऐसे हैं कभी कभी जो है हमसे बड़ा मित्रता वाला भाव रखते हैं, लेकिन हमें दासता का भाव रखना चाहिए, हमें अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनको क्रॉसिंग करना चाहिए। सो सीनियर वैष्णवास गुरु दे मे बिकम वेरी फ्रेंडली, लाइक समटाइम्स श्री गोपाल कृष्ण महाराज वो बोलते हैं सो अमोघा व्हाट्स न्यू, अब काफी मित्रतापूर्ण महाराज ने बात कर ली, अब मैं कहूँ श्री गोपाल कृष्ण मैनी थिंग्स न्यू ना, मरूंगा मैं, खत्म हो जाऊंगा उसी पल खत्म हो जाऊंगा, राइट। सो सीनियर वैष्णवास वो हमसे होता है वो मित्रता का भाव रखें, हमारे प्रति करुणा स्नेह दिखाते हुए, लेकिन हमें हमेशा दास का भाव रखना चाहिए। सो वी शुड नेवर एवर कॉपी देम नोइंग दैट दे आर ट्रांसेंडेंटल। प्रभुपाद जी ने बोला कि लिमोजिन भी लिखवा कि द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम ही लिखा सकते यूनाइटेड कि स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ पंजाबी बाग, वी कैन डू दैट, वी कैन नॉट कॉपी दैट, जो होता है पापी वो करता। अब हमें कॉपी क्या करना है, हमें पद चिन्हों पर चलना है, यानी कि उन्हें उनके दिशा निर्देश पर चलना है, पर कॉपी करना इमिटेट करना वो नहीं करना चाहिए। और कोई अरे कहीं पे बोलिए, बताइए बोलिए प्लीज।
हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी इतने सुंदर व्याख्यान के लिए, जो आपने भोग और वैराग्य युक्त वैराग्य के बारे में आपने जो चर्चा की है, तो ये सिद्धांत एक पारिवारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के ऊपर कैसे इसको लागू किया जा सकता है, क्योंकि परिवार में रहते हुए हम ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ पर निरंतर रूप से भोग या जो उसकी वस्तुएं हैं रहती हैं, और कुछ हद तक हमें उसको सामाजिक और पारिवारिक वातावरण के कारण से करने की भी उसको ज़रूरत पड़ जाती है। वो तो कैसे हम उस भावनाओं को अपने हृदय में हम जो प्रकट कर सकते हैं या उसका अभ्यास कर सकते हैं जिससे कि हम वैराग की ओर आगे बढ़ सकें।
वैसे तो इसका बड़ा सिंपल जवाब है, अगर कोई खनाई प्रिय पूज जैसे वैष्णव संग करेगा तो उसके हृदय में गुण अपने आप आ जाएंगे, लेकिन फिर भी सेवा के तौर पे अगर आप मुझसे प्रश्न पूछे तो मैं बिल्कुल का जवाब ये दूंगा प्रभु जी, कि गृहस्थों के केस में या ब्रह्मचारी के केस में भगवान कभी ये नहीं देखते कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, भगवान देखते हैं कि उसको क्या करना पड़ा और फिर उसने क्या किया, भगवान ही देखते हैं। तो इसीलिए क्या करना पड़ा परिस्थिति है, क्योंकि परिस्थिति में जितना अप्स एंड डाउन्स गृहस्थ जीवन में आती है उतनी ब्रह्मचारी लाइफ में नहीं आती। सो क्या करना पड़ा और फिर उसने क्या किया, भगवान ये देखते हैं। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल अगर एक गृहस्थ है उसे जॉब करनी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है, कर्मी लोगों से बात भी करनी पड़ती है, आप वो आप चैतन्य भागवत का श्लोक का पालन नहीं कर पा रहा कि कर्मी व्यक्ति का चेहरा देखकर भी हमें कृष्ण की विस्मृति होती है। नहीं, वहां तो कर्मी लोग ही है, नहीं वो देखकर क्या करता है, उनके चेहरे को देखकर निहारता है, क्या करता है, क्या करना पड़ा और फिर क्या किया, तो ये कैलकुलेशन वास्तव में की जाती है। सो दैट इज अगर गृहस्थ हैं, दे आर डीलिंग आउटसाइड, उनकी बाहर लोगों से डीलिंग्स हैं, भी बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, बीइंग अ स्टूडेंट हो, या बीइंग अ होम मेकर हो, बीइंग अ गुड वाइफ हो, बीइंग अ गुड मदर हो, तो भगवान ये देखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए था और फिर क्या किया। तो ये जो है, इसीलिए जो गृहस्थ हैं उनकी कैलकुलेशन भगवान अलग से लेके चलते हैं, और जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं उनकी कैलकुलेशन अलग लेके चलते हैं। और देखते हैं भक्त लोग नाम का जो ग्रंथ है, जो भक्ति ठाकुर जी ने लिखा, उसमें जो 6 ऑब्स्टिकल्स हैं भक्ति के लिए, जो 6 ऑब्स्टिकल्स हैं कि हमको प्रजल्पा नहीं करना चाहिए, हमें हमें बहुत ज्यादा अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, तो इसमें गृहस्थ के लिए अलग पैरामीटर सेट किए उन्होंने, और जो रेनशियंट हैं उनके लिए अलग पैरामीटर सेट किए उन्होंने। सो दैट इज दोनों के अलग पैरामीटर्स हैं, ब्रह्मचारी के लिए अलग है और गृहस्थ के लिए अलग है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा घर बचा करके रखना, ये ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए। पैसा आया थोड़ा उसने रख लिया कि मैं एक दिन जो अपना मकान बनाऊंगा अपना वृंदावन में, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, तो एक फ्लैट एक प्लॉट तो बनता है मेरा। और फिर उसने बहुत सारे हाउस प्रोग्राम किए, माउस प्रोग्राम किए, और फिर उनसे पैसा लेकर के हमने इकट्ठा किया, वो ये काम कर रहे हैं, तो ब्रह्मचारी गलत कार्य कर रहा है। लेकिन गृहस्थ को जो है कुछ लक्ष्मी पूंजी जो है इकट्ठा करके रखना सुरक्षा के लिए, वो उनको अलाउड है, ये उनके आश्रम का नियम है। सो दैट वेज जो गृहस्थ और ब्रह्मचारी है दोनों की कैलकुलेशन अलग चलती है। जैसे भगवान ये देखते हैं कि हम क्या कर सकते थे और फिर क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रह्मचारी है वो मंदिर में 12 घंटे सेवा कर सकता है, उसने 6 घंटे सेवा की, ठीक है, कितना परसेंटेज हुआ, 50%। एक गृहस्थ था वो 4 घंटे सेवा कर सकता था, उसने 3 घंटे सेवा की, परसेंटेज कितनी हुई, तो कृपा किसको मिलेगी, 75 वाले को, 50 वाले को। लेकिन गृहस्थ ने 3 घंटे सेवा की है और भक्त ने और ब्रह्मचारी ने 6 घंटे सेवा की है, तो किसको ज्यादा कृपा मिलनी चाहिए, गृहस्थ को, क्योंकि भगवान का परसेंटेज सिस्टम चलता है, कौन कितना कर सकता था फिर कितना किया। ब्रह्मचारी 12 घंटे कर सकता था, मुझे 6 घंटे किया, 6 घंटे सोया, वो खा पी के मस्त हो गए, टन हो गए एकदम, 50%। और गृहस्थ है वो 4 घंटे कर सकता था लेकिन उसने 3 घंटे किया, 75%। तो इसे भगवान की जो जो कैलकुलेशन है वह ऐसी चलती है कि आप कितना कर सकते थे और फिर आपने कितना किया, आप कितना जो है आपने अपने पास कितना रखा आपने। सो दैट पीस क्या है, तो भगवान गृहस्थों के लिए अलग कैलकुलेशन लेके चलते हैं, लाइक दैट। सो दैट पीस बाहर डीलिंग्स करनी पड़ती है, लेकिन मन अगर डिटैच्ड है उन चीज़ों से, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, मॉर्निंग प्रोग्राम जो हमारे कवच है वास्तव में, तो गृहस्थ जीवन में मॉर्निंग प्रोग्राम इज मस्ट, MUST, अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक्स फॉन्ट साइज 72, मस्ट मॉर्निंग प्रोग्राम मस्ट होगा तो गृहस्थ भी एकदम मस्त होगा। अगर मॉर्निंग प्रोग्राम त्रस्त होगा तो अस्त होगा, व्यस्त होगा, चारों खाने पस्त होगा, क्योंकि वो गृहस्थ होगा। मॉर्निंग प्रोग्राम इज द की, तो इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम जो है वो रहना चाहिए, अनकॉम्प्रोमाइजिंग मॉर्निंग प्रोग्राम। तो इस तरह से दिन भर में जो है गृहस्थ को कोई ऐसी चिंता नहीं होगी, कृष्ण जो है बने रहेंगे उसकी चेतना में, वो वाइब्रेशंस बनी रहेंगी, जो सुबह सुबह जिसने अटेंटिव चैंटिंग हरे कृष्णा किया है वो वाइब्रेशंस लेकर के ऑफिस जाएगा, वो लेकर के अपने परिवार को संभालेगा, तो इसीलिए जो है कृष्ण की विस्मृति होगी ही नहीं उसको फिर। तो मॉर्निंग प्रोग्राम इज द की, ये चीज है। तो चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, एवरीवन शुड हैव सॉलिड मॉर्निंग प्रोग्राम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह से देन वी कैन टेक केयर ऑफ आवर ड्यूटीज। तो इस तरह से कैलकुलेशन चलते हैं, आप कितना कर सकते थे और फिर कितना किया। और आइडियल हमें सीखना चाहिए कनाया प्रिय प्रभु जी से, प्रभु जी सच आइडियल गृहस्थ का, सो वेरी आइडियल की मतलब हमारे ऐसे सैकड़ों ब्रह्मचारी इनके गृहस्थ जीवन पे न्योछावर हैं, इतना ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस है प्रभु जी का गृहस्थ जीवन। तो हम तो प्रभु जी से आशीर्वाद चाहते हैं कि प्रभु जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे, तो हम भी अच्छे भक्त बन सकें, क्योंकि प्रभु जी सच अ सुपर्ब डिवोटी, क्लासी डिवोटी, फर्स्ट क्लास डिवोटी। कनाया प्रिय प्रभु जी की जय। ओके, 9:10 हो गए हैं, तो ये भी विराम देंगे हम। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की, श्यामानंद प्रभु त्रिभाव दिदी महामहोत्सव की, समस्त एकत्रित वैष्णव भक्त बिंद की जय। गौर प्रेमानंद।